नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
ये जानते हुए भी कि इस बार उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया गया है, शिवराज सिंह चौहान पूरे मन से मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में लगे दिखे। अगर उनकी मेहनत सफल होती है तो क्या उसका फल भी उन्हें मिलेगा? क्योंकि लंबे समय से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने इस बार अपने 7 सांसद मैदान में उतार दिए, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर के बीच जीते कोई भी, क्या मामा यानी शिवराज की हार पक्की है? इस पर बात करते हैं नवभारत टाइम्स की असिस्टेंट एडिटर अल्पू सिंह से, जो मध्य प्रदेश की चुनावी हलचल कवर कर रही हैं। अल्पू जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में अब शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या दिखता है? अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो क्या एक बार फिर उन पर दांव लगाएगी?
जी अक्षय जी, हम लोग भोपाल में थे और उसके बाद हम बुधनी गए थे, जहाँ से शिवराज जी जो है इस बार चुनाव मैदान में, बल्कि पिछले कई बार से उसी क्षेत्र से लड़ते रहे हैं। तो वहाँ पर एक महिला से मेरी बात हो रही थी, और इसको अगर आप सांकेतिक तरीके से देखें तो उनके कहे से आप पूरे परिदृश्य को समझ जाएंगे कि शिवराज सिंह चौहान किस तरह की स्थिति का सामना जो है वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। क्या चुनावी प्रचार और मध्य प्रदेश की बीजेपी की जो चुनावी एक लैंडस्केप है, उसमें उनकी क्या जगह है। उन महिला ने मुझसे कहा कि देखिए, ये उनका घर है, हम उनको यहाँ से हमेशा जिताते आए हैं और जिताकर ही भेजेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए या ना जाए, लेकिन बुधनी जो है उनको निराश नहीं करेगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि बुधनी में एक ग्रामीण महिला जो है, उनको इस बात की जानकारी है कि शिवराज जो है उनको खासिये पर पार्टी में रखा है। आपको याद होगा 21 अगस्त को अमित शाह जो है वो भोपाल आए थे, और वहां पर उन्होंने जो है रिपोर्ट कार्ड रखा था शिवराज सरकार का। उस वक्त पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि बताइए, जो है वो अभी चुनाव में आपका उम्मीदवार कौन होगा मुख्यमंत्री का। ये सवाल अपने आप में पूछा जाना भी जो है वो इस तरह इस बात की ओर संकेत करता है कि शिवराज को लेकर बीजेपी जो है वो हालिया वक्त में इस तरह के संकेत देती रही है। इस वजह से पत्रकारों ने ये पूछा, और अमित शाह ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, अभी तो शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय करना पार्टी का काम है और पार्टी तय करेगी। अब इसी से बहुत साफ हो गया था कि शिवराज जो है वो उनको जो है पार्टी राज्य की राजनीति में बहुत अहमियत नहीं दे रही है। अगर आप भोपाल जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे कि शहर में कोई ऐसा व्यक्ति भी जो वहां नहीं रहता है और बाहर से आया है, वो भी ये बात को बहुत आसानी से नोटिस कर लेगा कि बीजेपी की ओर से जो चुनावी होर्डिंग भी लगे हैं उसमें शिवराज जो है वो ढूंढने पर मिलते हैं। मुख्यमंत्री हैं और इतने इतने वक्त से रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव जो है वो उनके चेहरे पर नहीं लड़ा जा रहा था। ये कोई आउटसाइडर भी आपको बता देगा मध्य प्रदेश का। तो ये ऐसे में जो है, उसके बाद आपको मालूम है कि जब लिस्ट आई और बीजेपी ने जो है वो अपने उम्मीदवार जो है वो टिकट उनको देना शुरू किया, तो कम से कम जो 79 ऐसे प्रत्याशी थे जिनका नामों का ऐलान हो गया था और कहीं शिवराज का नाम नहीं था, सब लोग जो है वो अटकलें लगाने तभी से शुरू कर दी थी लोगों ने कि मतलब ये क्या हो रहा है। आपने जैसे बताया कि एक महासचिव और 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद जो है उनको टिकट दिया गया, लेकिन शिवराज का नाम कहीं नहीं था। बाद में चौथी लिस्ट में उनका नाम जो है वो शामिल किया गया, और खुद शिवराज ने भी अपनी तरफ से एक असर्टिव अप्रोच लगाने की भी कोशिश करी। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जब उन्होंने देखा कि जो सेंट्रल हाई कमांड जो है बीजेपी की, उनको राज्य की राजनीति में वो ऐसा राज्य जिसके वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उस राजनीति में, चुनावी राजनीति में उनको दरकिनार किया जा रहा है, वहां पर वो थोड़े असर्टिव भी हुए। उन्होंने मंचों से इस तरह के एक सजेस्टिव एक अप्रोच दिखाई, जहां पर लोगों से ये पूछा कि क्या मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए, और लोगों ने कहा कि जी, मतलब एक तरह से जो मीडिया में उसका जो संदेश गया वो ये गया कि अभी पूरी तरह से आउट नहीं हुए। ये उनका अपना ही एक नैरेटिव, एक अपना ही जो रक्षात्मक रणनीति कोई व्यक्ति कोई राजनेता अपनाता है जब उनको हाशिए पर किया जाता है, वही था। तो ऐसे में इस सवाल का जो जवाब है वो बहुत ही स्पष्ट है कि राज्य की राजनीति में अभी चुनाव जो है वो किस ओर जो है वो जाएगा और क्या परिणाम होंगे वो अभी नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ये तो हम कह ही सकते हैं कि शिवराज उसमें विजेता शायद ना हो, और ये बात वो अच्छे से जानते हैं।
जी, तो चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही बीजेपी ने एकदम पीछे रखा शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन ये बात भी तय है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली लक्ष्मी और कन्या विवाह जैसी योजनाओं से महिलाओं में काफी लोकप्रिय है, इसीलिए उन्हें मामा भी कहा जाता है। तो इन योजनाओं का कैसा असर दिखा महिला वोटर्स के बीच? क्या इन योजनाओं में इतना दम है कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी असर कम कर दे?
देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा। अगर ये कहा जाए कि शिवराज के पास एक वो क्या चीज है जिसके बूते पर, जिसको आधार बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो लाडली योजना ही है। और ऐसा जो है शिवराज बार बार जो है कहते भी आए हैं, उन्होंने पूर्व में भी इस तरह की योजनाएं जो है महिलाओं से जुड़ी योजनाएं जो है, जैसे आपने कहा कि उनकी छवि जो है वो एक इमोशनल संबोधन मामा के तौर पर जो है मध्य प्रदेश में महिलाएं जो है उनसे रिलेट करती है। और अभी जो लाडली योजना है ये सच में ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जो सबसे मुखर एक ट्रेंड या एक योजना के रूप में जो है वो सामने आई है, किसी और मुद्दे की कोई बात ही नहीं हो रही है। और ठीक चुनाव से पहले जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाना, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में होड़ है इसको लेकर। जो 1500 रुपए डालने की बात जो है वो कांग्रेस ने की, उसके बाद बीजेपी ने जो है वो डालना शुरू भी कर दिया। और आप ये यकीन मानिए कि इसे लेकर जो है दोनों पार्टियां बार बार जो है विमेन वोटर, जो कि करीब आप अगर चुनाव आयोग का आंकड़ा देखेंगे तो कम से कम आई थिंक 2,70,00,000 जो विमेन वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में, उनको लुभाने के लिए जो है दोनों पार्टियों में बहुत रस्साकशी हुई। उसकी वजह यह है कि ऐसा माना जाता है कि कम से कम 27 सीट्स ऐसी हैं, 27 सीटें ऐसी हैं जिन पे महिला वोटर जो है वो बहुत प्रत्यक्ष रूप से जो है वो असर रखती है। और अगर इस आबादी को आपने प्रभावित कर दिया या कहीं से आप उनको लगा कि नहीं आपको जो है वो वोट देना चाहिए, तो वो पक्ष में ही होंगी। तो जो मेरा अनुभव रहा रिपोर्टिंग के दौरान प्रचार को कवर करते हुए, उसमें शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, इनफैक्ट ट्राइबल एरियाज में जहाँ पे कि आदिवासी एरियाज में, मालवा क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर आप किसी से भी पूछेंगे, किसी भी महिला से आप पूछें कि आपको लाडली का पैसा मिलता है और वो अकाउंट में है क्या, आपके जाता है, तो वो कहेंगे हाँ। और ये बहुत हैरानी की बात है कि कोई भी बहुत सारे महिला वोटर्स हमें ऐसे मिले जिनके पास कोई और दूसरी केंद्रीय और स्टेट की जो योजना है उसका फायदा, उस स्कीम का फायदा नहीं पहुंच रहा था, लेकिन लाडली योजना जो है इसका जो पैसा, जो किश्तें सरकार दे रही है मध्य प्रदेश की, शिवराज सरकार जो दे रही है, वो उन तक पहुंच रहा था। हालांकि इसमें ये भी है कि इसके तहत 1,32,00,000 जो महिलाएं हैं उन्हीं का दायरा है जो उन पर आएगा, लेकिन वो भी बहुत बड़ी तादाद है। तो ये बात जो है वो प्रधानमंत्री ने भी एक बार जो है वो मंच से कही थी लाडली योजना को लेकर, उन्हें मानना पड़ा था कि शिवराज की ये एक गेम चेंजर योजना है जो कि आगे चुनाव में और राजनीति में, चुनाव परिणाम में जो है वो असर डाल सकती है, इसको बीजेपी भी मानती है। बहरहाल अगर शिवराज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, मुख्यमंत्री के लिहाज से कहें, तो उनके पास सिर्फ लाडली है, उनके पास जो है अभी हताश कैडर है और सेंट्रल जो आला कमान है, जो केंद्रीय आला कमान है बीजेपी की, उनकी तरफ से उनको बहुत प्रोत्साहन नहीं है। वो सिर्फ यही मानकर बैठे हुए हैं कि लाडली उन्हें जिता दे तो जिता दे, क्योंकि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी की भी काफी स्ट्रॉन्ग वेव है।
काफी स्ट्रॉन्ग वेव है और उसका फायदा कांग्रेस उठाने से चूकना नहीं चाहती। पिछली बार तो उसके हाथ से बीजेपी ने सत्ता छीन ली, लेकिन इस बार जिस आक्रामक तरीके से कांग्रेस प्रचार कर रही है, और अगर आपने लाडली योजना की बात की तो उसकी काट में कांग्रेस ने ऐसी फ्रीबीज की झड़ी लगा दी, उसकी अगर हम लिस्ट देखें तो बेरोजगारों को नकद सहायता वो देगी, छात्रों को वजीफा, कृषि ऋण में माफी, या फिर एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी पर देगी। तो ये जो अब एक तरफ लाडली और एक तरफ ये सारे फ्रीबीज, क्या ये बाकी सारे मुद्दे इनके पीछे दब चुके हैं, अब यही प्रमुख मुद्दे रह गए?
देखिए मुद्दे आप अगर देखेंगे जो हमने भी चुनाव प्रचार के कवरेज के दौरान देखा तो मुद्दे बहुत है मध्य प्रदेश में। मुख्य रूप से मालवा बेल्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी बेल्ट है, खासतौर से उसका जिक्र इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर 66 सीटें जो है वो आती हैं, और ये 66 सीटें जो है 230 सीटों में से जो है वो एक महत्वपूर्ण चंक है। पिछली बार बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान हुआ था। तो आप जो मुद्दों की बात कर रहे हैं तो इस बेल्ट के ही अगर मुद्दे की बात करें और कमोबेश यही स्थिति पूरे राज्य में भी है। देखिए दो मुख्य तौर पे जो एंटी इनकम्बेंसी के जो तत्व हैं या फिर जो मुद्दे हैं हवा में इस वक्त, चुनावी हवा में जो है मध्य प्रदेश की है, एक तो किसानों और खेती से जुड़ा मुद्दा है और दूसरा जो है वो युवाओं, बेरोजगारी और स्टूडेंट से जुड़ा मुद्दा है। अब दोनों की बात करते हैं। किसान जो है वो बहुत नाराज है, उसकी वजह यह है कि किसानों का कर्जा जो है पिछली बार जब 18 महीने के लिए कमलनाथ सरकार आई थी तो उन्होंने कुछ माफ किया था, जिसको फिर बीजेपी की सरकार फिर से आई तो उन्होंने जो है वो रोक दिया, एक ये नाराजगी है। उसके बाद सोयाबीन के जो किसान हैं वो अपनी फसल की सही लागत ना मिलने को लेकर बहुत परेशान है। एक जो बड़ा मसला है वो है यूरिया का मसला। पूरे राज्य भर में आप यकीन मानिए, आप कहीं भी जाइए, आप धार जाइए, आप बुद्धि जाइए, शहर जाइए, किसी भी इलाके में आप जाइए, आपको लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाहर खाद को लेके, यूरिया को लेके, और यूरिया मिल नहीं रहा है, जिसको लेकर उज्जैन में तो काफी हंगामा भी हुआ था, देवास में भी मंडी के आगे किसानों ने बहुत प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया था और खाद दो का नारा दिया था। अभी हाल ही की बात है और ये बात जो है वो बीजेपी सरकार या फिर जो अभी प्रचार में जो लोग लगे हुए हैं उनसे, मतलब बीजेपी के लोगों से, सरकार से जो है वो ऐसा नहीं है कि वो वाकिफ नहीं है, वो जानते हैं कि साथ खेती किसानी को लेके बहुत बड़ा संकट है। गेहूं और धान का जो 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 उपज का जो लागत, जो पैसा मिलता है जो, वो काफी नहीं होता है। इसके अलावा सोयाबीन के किसानों को तो नुकसान भी हुआ है बहुत, इस साल जो है वो बहुत ज्यादा पानी चल बारिश हो गई और कई जगह जो है बहुत कम बारिश हुई, बहुत नुकसान हुआ। खेती किसानी का बहुत संकट है और गांव में दिक्कत ये है कि लोगों के पास रोजगार और कुछ है नहीं। अब दूसरी बात करते हैं युवाओं की, तो युवा चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, दोनों तरफ जो है युवा वाकई बहुत परेशान। आप शहरी युवाओं से बात करें तो उनको वो आपको एक फेरिस्त बता देंगे स्कैम की, पटवारी की जो भर्तियों में जो घोटाला हुआ, इसके अलावा नर्सिंग जो कोर्सेज हैं उनके एग्जाम्स ही नहीं हुए हैं कई सालों से, 3-4 सालों से एग्जाम्स नहीं हुए हैं, उसमें देरी हो रही है, भर्तियों में बहुत देरी हो रही है। तो युवाओं के पास, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके पास नौकरी नहीं। अगर आप आंकड़ा देखेंगे वहां पर तो इस वक्त कम से कम 40 लाख के करीब जो है युवा वो रजिस्टर्ड है जो कि बेरोजगार है। तो उस लिहाज से आप देखें, और ग्रामीण जो है चूंकि उसके पास वैसे ही रोजगार नहीं है, वो कृषि से जुड़ा हुआ है, तो ये एक डिसकंटेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसकंटेंट है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत बड़ा तबका भी है, किसान अगर तय कर लें कि उन्हें किस तरफ वोट देना है तो उनको जो है वो बहुत भारी पड़ जाएगा बीजेपी को। और इसी से जुड़े हुए जो कांग्रेस, आपने बोला कि जिस तरह की योजनाओं की बात जो है वो कांग्रेस कर रही है तो इन्हीं से जुड़ी हुई है। जैसे बेरोजगारी का मसला है तो वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, कैसे देंगे, कैसे करेंगे, ये अलग बात है, वो उसको लेकर कानून बनाने की बातें कर रहे हैं। तो वो हर वो कोशिश कर रहे हैं, पार्टी जैसा करनी है चुनाव जीतने के लिए, कि जो एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर है उनका फायदा जो है विपक्षी पार्टी जो है वो उठा सके, वही कांग्रेस ने भी किया
जी। तो मुद्दे तो आप बता रही हैं बहुत है, अब देखना होगा कि जब जनता इस समय बटन दबा रही है तो ये सारे मुद्दे उसके जहन में भी हैं या वो किसी और वजह से ही अपना चुनाव कर रही है। आखिर में एक संक्षेप में जानना चाहेंगे कि सारे अनुमान तो यही कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह कांटे की टक्कर है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है, जनता इस बार किसी एक को फुल मेजोरिटी में सत्ता पर बैठाने जा रही है?
देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि चुनाव के परिणाम की सोच जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर एज एन ऑब्जर्वर, एज ए ले मैन, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने लोगों से बात की है वहां पे, मैं दो बातें कह सकती हूँ। और उसमें एक बात यह है कि कई जगह पर वोटर बहुत साइलेंट है। जैसे शहरी इलाकों में वोटर जो है वो बहुत ज्यादा उसके मन में क्या है वो जाहिर नहीं कर पा रहा है। तो राजनीतिक शास्त्र और चुनावी शास्त्र के विज्ञान में कहा जाता है कि साइलेंट वोटर तय कर चुका होता है कि उसको क्या करना है, वो आपको शायद ना बता रहा हो। और कई बार वो जो इस तरह का भी होता है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोटिंग होता है। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि ये तय है कि ये डिवाइसिव बहुत ज्यादा, मतलब बहुत वोटों का बहुत ध्रुवीकरण नहीं होगा। आप जानते हैं कि विंध्य के इलाके में तो आम आदमी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, उन्होंने 66 उम्मीदवार उतारे हैं, समाजवादी पार्टी ने 71, बीएसपी ने 181। तो छोटी पार्टियां जो दूसरे क्षेत्र है वो भी कोशिश कर रहे हैं वहां पर एंट्री की। और विंध्य का इलाका तो माना ही जाता है कि वो लॉन्च पैड है ऐसी पार्टियों के लिए, क्योंकि दूसरी विचारधाराओं से जुड़े लोगों को उन्होंने हमेशा मौका दिया है पास्ट में, अतीत में आप देखेंगे लेफ्ट से जुड़े लोग हों या बीएसपी से जुड़े लोग हों। लेकिन आ, आ, मालवा का इलाका और बाकी दूसरे इलाकों को देखकर लगता है कि टक्कर जो है वो दो ही पार्टीज में है, दोनों दो ही दल में है। और दूसरा ये बहुत ही त्रिशंकु वाला मसला नहीं होने वाला है, मतलब वोटर क्लियर है कि उनको क्या करना है और वो तय कर चुके हैं। अब वो किस पार्टी पे पूरा विश्वास जताएंगे किस बात का इंतजार है एक्चुअली।
बिल्कुल, 3 दिसंबर को ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने आखिर क्या फैसला सुनाया है। शुक्रिया अल्पी सिंह आपका।